एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक समकालीन अमेरिकी उपन्यास पर बात करने वाले हैं, वॉली लैम का पहला उपन्यास शीज कमांडन।
जी, 1992 में आया था ये और आते ही इसने काफी धूम मचाई थी।
हाँ बिल्कुल, ओपरा बुक क्लब में चुना गया और फिर तो ये मतलब एक कल्चरल फिनोमिनॉन बन गया। लैम को साहित्यिक पहचान इसी से मिली।
और वॉली लैम की खासियत भी यही है जो पहले टीचर थे, कि वो मानवीय भावनाओं को, खासकर मुश्किल भावनाओं को, जैसे आघात, बिखराव और फिर उससे उभरने की कोशिश, उसको बड़ी सहानुभूति से दिखाते हैं।
एक मनोवैज्ञानिक पकड़ है उनकी।
बिल्कुल, कहानी कहने में उनका विश्वास है कि वो बदलाव ला सकती है।
सही कहा, और शीज कमांडन इसी का एक बहुत मजबूत उदाहरण है। कहानी का समय है 1960 से 1980 का दशक अमेरिका।
जी, और ये वो दौर था जब लिटरेचर में महिलाओं के अनुभवों पर, परिवारों के अंदर की उथल-पुथल पर, मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा था।
हाँ बिल्कुल, इसे तकनीकी तौर पर बिल्डिंग्स रोमान कहते हैं, है ना?
हाँ, बिल्डिंग्स रोमान मतलब एक व्यक्ति के, एक किरदार के बनने की कहानी, उसके विकास की यात्रा बचपन से वयस्क होने तक।
तो आज हम इसी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। उपन्यास की मुख्य पात्र हैं डोलोरेस प्राइस। उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष, जो लोग उनकी जिंदगी में आते हैं, और मुख्य विषय क्या हैं इस कहानी के।
तो शुरू करते हैं कहानी के बिल्कुल पहले पन्ने से, डोलोरेस जब छोटी है।
हाँ, कहानी हमें मिलती है डोलोरेस से जब वो सिर्फ 4 साल की है। कनेक्टिकट या रोड आइलैंड का माहौल, 1950 का दशक।
और पहली नजर में सब कुछ ठीक ठाक लगता है, एक सामान्य अमेरिकी परिवार।
पर जैसा अक्सर होता है, वो स्थिरता ज्यादा देर टिकती नहीं।
जी नहीं, डोलोरेस के पिता टोनी, जो लोकल टीवी पर काम करते हैं, वो एक दिन अपनी सेक्रेटरी के लिए परिवार को छोड़ देते हैं।
और ये डोलोरेस के बचपन का पहला बड़ा झटका था। एक तरह से उसकी दुनिया हिल गई।
न सिर्फ उसकी बल्कि उसकी माँ बर्नीस पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। वो इस सदमे को झेल नहीं पाती और धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमार हो जाती हैं।
अपनी ही दुनिया में सिमट जाती हैं।
हाँ, और ऐसे में छोटी सी डोलोरेस को उसे भेज दिया जाता है उसकी दादी के पास,
जो इटालियन मूल की है और काफी सख्त मिजाज की।
जी,
तो अचानक उसका पूरा माहौल बदल जाता है, माँ बाप के घर से निकलकर एक अनुशासन वाले थोड़े ठंडे माहौल में।
और यहीं से उपन्यास की एक बड़ी ताकत सामने आती है, डोलोरेस की अपनी आवाज। पूरी कहानी फर्स्ट पर्सन में है।
हाँ, ये आवाज बहुत खास है। ये सिर्फ एक बच्ची की आवाज नहीं है, इसमें एक अजीब सी समझदारी है, दुनिया को देखने का एक तीखा व्यंग्यात्मक नजरिया है।
मजाकिया भी है लेकिन उसके पीछे दर्द साफ दिखता है। बिल्कुल, बहुत चोट खाई हुई कमजोर आवाज भी है। लैम ने कमाल का काम किया इस आवाज को रचने में। हम पाठक सीधे उसकी दुनिया में खिंच जाते हैं। पॉप कल्चर के रेफरेंस भी खूब हैं इसमें।
और यही आवाज हमें कहानी के उस मूल संघर्ष तक ले जाती है जिससे डोलोरेस पूरी जिंदगी जूझती रहती है। ये सिर्फ बाहरी घटनाओं का संघर्ष नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उसके अंदर की लड़ाई है। मेरे ख्याल से कहानी का सार इस सवाल में है कि क्या कोई इंसान बचपन के गहरे जख्मों से, परिवार के टूटने से, समाज के दबावों से उबर सकता है? क्या वो अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वापस पा सकता है?
क्या वो फिर से प्यार कर सकता है, प्यार पा सकता है? ये बुनियादी सवाल है।
जी, पिता का जाना, माँ की मानसिक स्थिति, दादी का वो सख्त प्यार, या शायद कर्तव्य कह लीजिए, ये सब मिलकर डोलोरेस के शुरुआती सालों को बनाते हैं।
वो लगातार अकेला महसूस करती है, असुरक्षित, जैसे उसकी कोई जरूरत ही नहीं।
हाँ, और इसी कमजोर असुरक्षित जमीन पर वो भयानक घटना होती है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है।
ये कहानी का एक बहुत ही दुखद और महत्वपूर्ण मोड़ है।
जी, 13 साल की उम्र में जब वो दादी के घर ही रह रही होती है, वहां एक बोर्डर रहता है, जैक स्पाइट। वो उसका यौन शोषण करता है।
ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये डोलोरेस के वजूद पर हमला है,
उसके विश्वास पर, उसकी सुरक्षा की भावना पर।
हाँ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा था वो भी इस हादसे में कुचल जाता है। लैम दिखाते हैं कि कैसे शोषण करने वाले अक्सर ऐसी ही कमजोरियों का फायदा उठाते हैं,
और डोलोरेस ये बात किसी को बता नहीं पाती।
वो उसे अंदर ही दबा लेती है।
जी,
लेकिन दबाया हुआ जहर कहीं ना कहीं से तो बाहर आता है।
कैसे निकलता है डोलोरेस के मामले में?
वो अनजाने में खाने में सुकून ढूंढने लगती है। खाना उसके लिए दर्द से निपटने का एक जरिया बन जाता है, एक कोपिंग मैकेनिज्म।
नतीजा?
नतीजा ये कि उसका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। किशोरावस्था आते आते वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है।
और ये वजन सिर्फ शारीरिक नहीं रहता, ये सामाजिक और मानसिक भी बन जाता है। बिल्कुल, स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे अलग थलग कर दिया जाता है, उसका शरीर ही जैसे उसकी पहचान बन जाता है, लेकिन एक नकारात्मक पहचान।
ये उसके लिए कवच भी है शायद, दुनिया की चोटों से बचाने वाला।
हाँ, कवच भी है लेकिन साथ ही एक कैद भी। वो खुद भी उसी में फंस जाती है, बाहरी दुनिया से कट जाती है,
टीवी की दुनिया में ज्यादा खोई रहती है।
हाँ, टीवी, खाना, व्यंग्यात्मक बातें, ये सब उसके तरीके हैं दर्द से जूझने के। कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि बाद में वो शायद अपनी उम्र से बड़े पुरुषों के साथ कुछ अनहेल्दी रिश्ते भी बनाती है।
शायद उनमें वो स्वीकृति ढूंढती है जो उसे कहीं और नहीं मिली।
हो सकता है।
यहाँ शरीर एक बहुत शक्तिशाली सिंबल बन जाता है ना? ये सिर्फ वजन नहीं, ये उसके अंदर का दर्द है जो बाहर दिख रहा है, समाज के पैमानों पर फिट न होने का सबूत।
जी, और लैम्ब इसके जरिए महिला शरीर पर समाज के जो दबाव होते हैं उसकी भी आलोचना करते हैं। उपन्यास में एक जगह जिक्र आता है जिसका मतलब कुछ ऐसा है कि मेरा मोटापा मेरा किला था, कोई अंदर नहीं आ सकता था पर मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी।
क्या विडंबना है, सुरक्षा भी और बंधन भी।
बिल्कुल, और ये संकट तब और गहरा जाता है जब उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता।
अकेलापन बढ़ जाता है।
हाँ, और तब वो एक बहुत ही निराशाजनक कदम उठाती है।
वो आत्महत्या की कोशिश करती है समुद्र में चल के।
जी, और लेखक ने उस सीन की तुलना एक फंसी हुई वेल से की है, एक बड़ा अकेला बेबस जीव। बहुत ही पावरफुल इमेज है वो।
दिल दहला देने वाली, लेकिन उसे बचा लिया जाता है।
हाँ, और ये घटना, ये टूटने का एक्सट्रीम पॉइंट उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाता है।
उसे ग्रेसलैंड मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया जाता है।
जी, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है।
क्या यहाँ से चीजें बेहतर होनी शुरू होती हैं?
तुरंत नहीं, शुरुआत में वो बहुत चुप रहती है, इलाज में सहयोग नहीं करती, उसे लगता है ये एक और कैद है। लेकिन धीरे धीरे एक थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर शॉ, उनकी मदद से वो थेरेपी में शामिल होना शुरू करती है।
ग्रेसलैंड में ऐसा क्या अलग था, क्या खास था वहाँ?
मुझे लगता है सबसे बड़ा फर्क ये था कि शायद पहली बार डोलोरेस ऐसी जगह थी जहां लोग उसे उसके शरीर या वजन से नहीं आंक रहे थे।
अच्छा,
वहां उसका बाहरी रूप उतना मायने नहीं रखता था, फोकस इस पर था कि उसके अंदर क्या चल रहा है।
एक सुरक्षित माहौल मिला उसे।
हाँ, एक सुरक्षित माहौल जहां उसे अपनी दबी हुई यादों का, उस भयानक हादसे का सामना करने के लिए एक तरह से मजबूर भी किया गया और सपोर्ट भी मिला।
यानी उपचार सिर्फ दवा नहीं है, माहौल भी बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, और ये प्रोसेस बहुत लंबा और मुश्किल होता है। आसान नहीं होता अपने अतीत के राक्षसों का सामना करना। दर्द की जड़ों को समझने लगती है, अपने व्यवहार के कारणों को।
और इसी दौरान वो अपना हाई स्कूल डिप्लोमा भी पूरा करती है।
जी, जो उसके लिए एक बड़ी बात थी, एक अचीवमेंट।
कई साल लगते हैं इस प्रक्रिया में।
हाँ, कई साल। और जब डॉक्टर्स को लगता है कि वो अब बेहतर है, स्थिर है, तो उसे संस्थान से छुट्टी मिल जाती है।
तो अब वो बाहर की दुनिया में एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ।
जी, वो कॉलेज जाती है, कोशिश करती है एक नॉर्मल जिंदगी जीने की। उसने वजन भी काफी कम कर लिया होता है इस समय तक।
लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा।
हाँ, वो उम्मीद करती हैं। और इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक शख्स आता है, डैंटे डेविस या डैंटे लेपो।
डैंटे कैसा है?
डैंटे एक अच्छा इंसान है, नेक दिल। वो डोलोरेस की परवाह करता है, लेकिन उसकी अपनी भी कुछ कमजोरियां, अपनी मुश्किलें हैं।
उनमें प्यार होता है, शादी होती है।
जी, और एक वक्त के लिए डोलोरेस को लगता है कि हाँ, उसे वो प्यार और स्थिरता मिल गई जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी।
लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, उनकी जिंदगी में एक नई चुनौती आती है।
हाँ, वो बच्चा चाहते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन्हें बांझपन की समस्या है।
और फिर कई बार मिसकैरेज का दर्द भी झेलना पड़ता है।
जी, और ये जो साझा दुख है, ये उन्हें जोड़ने की बजाय उनके रिश्ते में दरारें डाल देता है।
ऐसा क्यों होता है? अक्सर तो साझा दुख करीब लाता है।
शायद इसलिए कि दोनों ही पहले से अपने अपने अंदरूनी संघर्षों से जूझ रहे थे। वो इस नए सदमे से अपने अपने तरीके से डील करते हैं और शायद एक दूसरे का सहारा नहीं बन पाते।
तो ये साझा आघात भी उन्हें तोड़ देता है।
हाँ, आखिरकार उनका तलाक हो जाता है।
डोलोरेस एक बार फिर अकेली, टूटी हुई।
जी, और उसे लगता है जैसे वो वापस वहीं पहुंच गई जहां से शुरू किया था, उसी बिखराव में।
इस बार वो कहां जाती है?
वो वापस अपनी दादी के खाली घर चली जाती है, और ये शायद उसके लिए सबसे मुश्किल दौर होता है,
क्योंकि इस बार कोई ग्रेसलैंड नहीं है, कोई डॉक्टर शॉ नहीं है।
बिल्कुल, उसे अकेले ही अपने अतीत, अपनी तन्हाई, अपनी हताशा का सामना करना है। इसी दौरान वो अपने किरायेदार मिस्टर पुच्ची के साथ एक उलझे हुए रिश्ते में भी पड़ती है और अपनी बीमार दादी की देखभाल भी करती है।
यानी किस्मत उसे फिर वहीं ले आई जहां सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार उसे शायद अकेले ही लड़ना सीखना है।
हाँ, और इसी मुश्किल वक्त में दादी की मौत के बाद उसकी जिंदगी में एक पुराना दोस्त लौटता है, थायर।
थायर कॉलेज का दोस्त?
जी, थायर एक गे व्यक्ति है और शायद उन गिने चुने लोगों में से था जिसने डोलोरेस को हमेशा वैसे ही स्वीकार किया जैसी वो थी, बिना किसी शर्त के, बिना जजमेंट के।
ये रिश्ता डैंटे वाले रिश्ते से कैसे अलग था?
थायर के साथ उसकी दोस्ती एक ज्यादा मैच्योर प्लेटोनिक लेवल पर है, गैर रोमानी। इसमें वो पैशन या डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ एक गहरी समझ है, स्वीकृति है, एक स्थिर अपनापन है।
एक चुना हुआ परिवार जैसा।
बिल्कुल सही कहा, चोजन फैमिली। वो रिश्ते जो खून के नहीं, दिल के होते हैं। और शायद इसी रिश्ते में डोलोरेस को पहली बार सच्चा, बिना शर्त वाला इमोशनल सपोर्ट मिलता है।
और यहीं से कहानी अपने अंत की तरफ, एक तरह के समाधान की तरफ बढ़ती है।
जी, डोलोरेस आखिरकार शांति पाती है।
लेकिन ये शांति कैसी है? क्या सब कुछ ठीक हो गया? जख्म भर गए?
नहीं, उपन्यासी क्लेम नहीं करता कि सब ठीक हो गया या जख्म पूरी तरह भर गए, बल्कि डोलोरेस अपने अतीत के साथ जीना सीख लेती है।
उसे स्वीकार करना सीख लेती है।
हाँ, अपने शरीर को, अपनी यात्रा के उतार चढ़ाव को, अपने अधूरेपन को। वो ये समझ जाती है कि अब उसे उसके जख्मों से नहीं, बल्कि उसकी सहन शक्ति से, उसकी रेजिलियंस से पहचाना जाना चाहिए।
उपन्यास का सार है ना कि मैं एक लड़की थी जो बिखर गई थी, और मेरी जिंदगी खुद को वापस जोड़ने की कहानी थी, बेमेल टुकड़ों से।
वो टुकड़े शायद परफेक्टली फिट ना हो, लेकिन उनसे बनी तस्वीर उसकी अपनी है।
बिल्कुल। तो अगर हम मुख्य विषयों को देखें तो पहला है हीलिंग, यानी उपचार। उपन्यास दिखाता है कि हीलिंग का मतलब भूलना नहीं है।
नहीं, बल्कि अतीत के साथ अपने रिश्ते को बदलना है, और ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है।
हाँ। दूसरा, आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस।
जी, असली शांति बाहरी पैमानों को पूरा करने से नहीं मिलती, वजन कम हो गया, शादी हो गई, बच्चा हो गया, नहीं,
बल्कि खुद को वैसे ही अपनाने से मिलती है जैसे आप हैं, अपनी कमियों और ताकतों के साथ। डोलोरेस को ये समझना पड़ता है कि उसे अपना हीरो खुद बनना होगा।
हाँ, खुद को बचाना होगा।
और तीसरा, प्यार के अलग अलग रूप।
जी,
शोषण करने वाले रिश्ते जैसे जैक स्पाइट का या शायद मिस्टर पुची का भी, और दूसरी तरफ सच्चा सपोर्ट करने वाला प्यार जैसे थायर की दोस्ती या डैंटे का शुरुआती रूप। उपन्यास दिखाता है कि प्यार शायद सब ठीक ना करे, पर वो आपको खुद को ठीक करने की हिम्मत और सेफ स्पेस दे सकता है।
बिल्कुल। और वॉली लैम का लिखने का अंदाज, खासकर डोलोरेस की वो फर्स्ट पर्सन आवाज जिसमें ह्यूमर और दर्द साथ साथ चलते हैं, वो कमाल है।
हाँ, पाठक को बांध लेती है। और वो सिंबल्स, वेल, खाना, टीवी।
जी, वो कहानी को और गहरा बनाते हैं। ये सिर्फ डोलोरेस की कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं उन अनगिनत दबावों की कहानी भी है जिनसे महिलाएं गुजरती हैं।
तो कुल मिला के ये कहानी हमें याद दिलाती है कि गहरे से गहरे जख्मों से भी उभरना मुमकिन है। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लंबा हो सकता है, पर उम्मीद है।
हाँ, और शायद असली जीत बाहरी दुनिया में कुछ हासिल करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की लड़ाई जीतकर खुद को स्वीकार करने में है।
और ये सामाजिक उम्मीदों के बोझ के खिलाफ अपनी कहानी खुद लिखने की जरूरत पर भी जोर देती है।
जी, ये सवाल भी उठाती है कि क्या हम दूसरों को या खुद को भी सिर्फ उनकी बाहरी चीजों से आंकते हैं, या उनके अंदर के संघर्षों को, उनकी हिम्मत को भी देख पाते हैं?
ये सोचने वाली बात है, खासकर आज के दौर में जहां बाहरी दिखावे का दबाव शायद पहले से भी ज्यादा है। क्या हम डोलोरेस जैसी यात्राओं को समझने, उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?
ये सवाल वाकई साथ ले जाने लायक है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।